Welcome back, guys, with another episode of the Broadcast Podcast. As always, I have with me my other half,
Nazar Sayed.
And for the first time ever, hamare paas hamare show pe ek recurring guest aa rahe hain, which I am a massive fan of ever since I discovered his music, because I would like to say discover is the correct word.
Yep.
And then subsequently, aapne bhi uski music discover ki.
Oh yeah, yeah. Fell in love with this man's music.
It was an honor to speak with you last time. Hum log ko bahut maza aaya tha, and through our channel, a lot of our other friends got to discover your music. So
thank you.
Welcome back, Umar bhai. Kya hal chal hai, kya chal raha hai?
Bilkul theek yaar. Thank you for having me, guys.
No, kaise for sure. 100%, man. We're a lot better. Last time jab humne baat ki thi aapse, to peak pandemic chal raha tha. Yeah. Aur abhi things have sort of eased up a little bit, lekin yahan pe Toronto mein to they're talking about closing down again. So thoda sa achha. On and off chal raha hai.
Yeah, hamari second wave ki lehar bilkul chhai hui hai. So
acha, hamari abhi yahan second wave bas tairti aa rahi hai hamare paas.
Haan, aap log kya
kisi bhi waqt pahunch jayegi second wave.
Haan, hum log follow kar rahe the news, and it was like kabhi bhi shutdown ho sakta hai, cases aap log ke abhi badh rahe the, to it's pretty crazy. लेकिन
ऐसा ही है, बस समझ नहीं आती. आज एक दिन बढ़ जाते हैं और फिर अगले दिन कम हो जाते हैं.
हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा वाकई में. मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ उमर भाई ऑन योर न्यू एल्बम. इट आई हैड द चांस टू लिसन टू हाफ ऑफ द सॉन्ग्स जो आपने मुझे भेजे थे, एंड आई हैव टू से दैट वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, वेरी वेरी प्राउड. And we enjoyed it very, very much. So, aapko bahut bahut mubarakbad.
Thank you, yaar. Genuinely, it means a lot.
How did you come up with this concept of Taram Taram?
Yaar, so basically, Taram Taram, jo hai na, main pehle jo apni pehli album ki thi, uska naam maine rakha tha Rampam Para.
Ji.
Aur us time pe jo hai na, ek mere dimag mein ek ideologies thi ke yaar. पहली एल्बम जो है फुल एक रोमांटिक बॉय की होनी चाहिए, फिर दूसरी एल्बम एक रिवेंज एल्बम होनी चाहिए, जो जिसका नाम था गंजे की एंट्री, और उसी एल्बम का पार्ट था झूठी मकार, हेंस मैंने गंज कराई. वो एल्बम पता है पूरी तैयार हो गई और उसके सारे गाने जो है ना कंप्लीट हो चुके हुए थे ऑलमोस्ट, और बस स्टूडियो में थे और रिलीज का प्लान बन रहा था. तो मैंने रियलाइज किया कि यार ये चीज मैं फील नहीं कर रहा, और ये चीज मैं फील नहीं कर रहा, तो मैं कैसे ऑडियंस के सामने ये चीज कन्वे कर सकता हूँ कि मैं रिवेंज लेना. एक वो टीनेज फेज था जो जिसमें से मैं गुजरा था, और अब वो मैं नहीं फील कर रहा था. तो उसके बाद जो है ना, मैंने उस चीज से ब्रेक करने के लिए मैंने उड़ता तारा लिखा था, और जो वो पहला ऐसा गाना था जो जिससे मुझे था कि यार ये मैं एक्चुअली हूँ, कि लोग सारे मेरे इर्द गिर्द बातें कर रहे हैं पर मैं एक्चुअली ये हूँ. फिर मैंने गाने लिखता गया और रिलीज करता रहा, और फिर इवेंचुअली जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ ना कोविड का पहला वाला, तो घर में सारे बैठ गए, और मैं बल्कि एक संग गिटार पकड़ता हूँ, मैंने मेलोडी बनाई. मैं बताता हूँ.
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
डेफिनेटली.
उमर भाई गिटार लेने जा रहे हैं फॉर द पीपल जो हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं.
रात है सुनहरी सी, रंग बदलती जा रही, अंधेर में ये रोशनी, सवेर में ये दिख रही, एक साए में पुकारती, बिन आवाज बुला रही, सोचता है मन मेरा, ये ढूंढता है दिल, जरा संभल संभल के चल रहा, फिर भी कांटा चुभ रहा है, भीड़ में जो दिख रहा है, दिल ही दिल में मिल रहा है, कांच के इन पत्तों पे बंदा यूं लज रहा है, भूल गया रब को ये तो खुद को यूं ही ढूंढ रहा है. Dararam daram daram dararam daram
यही से I can see the inspiration of your album just from this one song.
हाँ, वो बस ऐसी melody जब आई थी ना, और like for me it was more like on the lyrical side के सो लाइक आई सेड कि वो जो पिछली एल्बम थी वो रम्पम पारा थी
जी.
और लाइक इट वाज वेरी लाइक मेरे दोस्तों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि यार तुम अब दूसरी एल्बम जो कर रहे हो उसका नाम भी तुमने तरम तरम रख दिया है, क्या तुम कोई खिसके हुए इंसान हो, क्या सीन है तुम्हारा. तो बट फॉर मी इट वाज लाइक इट्स द ट्रम्पलिंग डाउन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ रम्पम पारा, कि रम्पम पारा जब टूट के बिखर रहा है और वो एक नई रात के थ्रू एक बस एक नई रीबर्थ टाइप चीज हो रही है, तो वो क्या है, वो मेरे लिए फिर तरम तरम बना के नहीं ये तरम तरम ही है. और मैंने इस पे फिर लाइक मैंने अपनी टीम से भी जब डिस्कस किया तो मैंने उनको ये कहा कि नहीं ये ही हम नाम रख रहे हैं. और लाइक हम पूरी एल्बम के सारे गाने के नाम हमने सोचे, फिर हमने कहा यार कोई और रख लेते, लेकिन फिर इवेंचुअली वी डिसाइडेड टू स्टिक विद दिस नेम. तो कोई नाम नहीं मिलते ये कहा कि यार तुम्हें कोई नाम नहीं मिलते क्या, तुम्हें कोई ढूंढ लो, कोई बेहतर चीज ढूंढ लो, तुम फिर तरम तरम पे आ गए रम्पम पारा के बाद. तो बट लेकिन वो वही बात है, जो आर्टिस्ट को सही लगता है फिर वो आर्टिस्ट इन द एंड फिर वही डिसीजन लेता है.
सही बात है. So would you say that there is like a connection between रम्पम पारा and तरम तरम, like are they direct sequels?
They aren't direct sequels because इसमें बीच में एक वाला पार्ट जो है ना वो स्किप हो गया है, वो गंजे की एंट्री वाला पार्ट, वो तीन गानों के बाद वो एल्बम बंद हो गई थी और वो कभी हुई नहीं थी. तो उसके बाद ये एक काइंड ऑफ कर रहा हूँ, तो मैं अब रम्पम पारा से नहीं करूंगा, मैं तरम तरम से करूंगा. तो लाइक प्रॉब्ली अगली एल्बम पता नहीं क्या होगी. बट
इतनी
आपको चीजें चाहिए नहीं होती लाइक ये, अगर आप लोगों को मैं वैसे ही दिखाऊं ऑफ द डायरेक्टर टाइप चीज, तो ये मैंने कर्टन्स का वो कर्टन्स कह रहा हूँ कंबलों का एक वोकल बूथ बनाया हुआ है.
हाँ, अच्छा.
तो वो काम चलाने वाली चीज होती है होम स्टूडियोज में. फिर अभी इस कमरे में मैंने चीजों से भरा वैसे, क्योंकि अगर मैं ना भरूं तो वो साउंड रिफ्लेक्ट करती है, तो
रिवर्ब आ जाता
है. रिवर्ब आ जाता बिल्कुल. तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए फिर आपको जरा चीजें डालनी पड़ती कमरे में.
हमने भी अभी मेरे और मेरे दोस्तों के ग्रुप ने फ्लोर 44 ने एक गाना रिलीज किया था, और उसको सिर्फ एक गाने को प्रोड्यूस करने में हमें इतनी दुश्वारी पैदा हुई थी, क्योंकि हम पांचों अलग अलग जगह पे हैं. हम लोग, मैं टोरंटो में हूँ, मेरा गिटारिस्ट पियानिस्ट टोरंटो में है, मेरा गिटारिस्ट और प्रोड्यूसर जो है वो दुबई में है, और मेरा सिंगर कराची में.
अच्छा.
तो मतलब मैं एक ट्रैक ले डाउन करता, फिर मैं उसको ड्राइव पे भेजता वोकलिस्ट को, वो गा के भेजता प्रोड्यूसर को, वो ड्रम्स डालता और बीट ऑफ हुई भी है. इट वाज जस्ट कंप्लीटली केओस.
ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अगर आप बैठे हो और काम करना, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल केओटिक सीन ही है. यार म्यूजिशियंस को नहीं सूट करता, म्यूजिशियंस को यही सूट करता है कि हम एक ही कमरे में जैम करते हुए सारों ने अपनी अपनी इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया है, वो क्या कहते हैं, तारे लगाई हूँ, माइक्स लगाए हैं.
और जब बंदे भी ज्यादा होते हैं ना, देयर इज लाइक मोर क्रिएटिविटी और यू हैव मोर ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि कोई बंदा बोल ले यार नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए. तो आई गेस अगर आप एक सोलो आर्टिस्ट हैं देन यू हैव दैट फ्रीडम के यार नहीं, नाम अगर तरम तरम है तो तरम तरम है बस.
हाँ, वो है, वो बिल्कुल ऐसी बात ही है कि अगर मैं उस चीज पे फिर कह देता हूं तो फिर वो हो जाता है वो, कि मुझे किसी की उस तरह सुननी नहीं पड़ती.
सही बात.
ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की गालियां सुननी पड़ जाती और
वो तो जिंदगी भर सुननी पड़ेगी. और भाई दैट नेवर गोस अवे.
मगर आई थिंक एट दिस पॉइंट आप इम्यून भी हो गए हैं.
हाँ, वो तो कब से सुनते आ रहे हैं, अब तक तो फर्क ही नहीं पड़ता. आप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है इजी है.
अच्छा एक बात जो आपके बारे में ना, मैं आपके कमेंट सेक्शन में हर जगह लिखा होता है यार उमर भाई सो अंडररेटेड सो अंडररेटेड. आप भी थक गए हैं सुन सुन के? मैं तो थक गया सुन सुन के
यार. पता है मैं इसका, मैं असल में कुछ कर नहीं सकता.
और मैं इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है आई गेस कुछ हो नहीं सकता, ये वक्त का अपना सीन है. तो अगर तो किसी को लग रहा है कि एक्चुअली जेन्युइनली काम अंडररेटेड है और इसकी वर्थ ज्यादा और इसको ज्यादा रैंकिंग होनी चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे ये पूरा यकीन है कि वो लोग जिनको ये फील हो रहा है वो लोग ही वो काम स्प्रेड कर देंगे.
और word of mouth is the best form of advertising, right? Like that. मेरे दोस्तों के सर्कल से कितने ज्यादा लोगों ने आप लोगों को यहाँ आपको एटलीस्ट यहाँ पे मेरे इनर सर्कल्स में, फिर मेरे आउटर सर्कल्स में, फिर इसके दोस्तों ने, लाइक ऐसे वर्ड ऑफ माउथ फैलते फैलते लाइक यू आर नाउ लाइक अ हाउसहोल्ड नेम हियर एटलीस्ट अमंग माय फ्रेंड्स. जब आपने अपनी एल्बम अनाउंस की थी तो वी वर सो एक्साइटेड लाइक ओ माय गॉड उमर का नया गाना आ रहा
है. एंड आई रियली लव द फैक्ट कि आपने यू गेव योर ट्रू फैंस एन ऑप्शन टू सब्सक्राइब एंड गेट लाइक एन एडवांस लिसन टू द फर्स्ट 5 सॉन्ग्स. जो मेरा तो स्टार्ट राइट हुए मैंने ईमेल भेजी और आई गॉट द सॉन्ग, सो दैट वाज सम रियली गुड प्रमोशन एज वेल.
या तो बेसिकली वही मैं अब्दुल्ला मलिक से बात कर रहा था एंड हम लोग के बातों में से ना आपकी म्यूजिक के बारे में बात हुई थी एंड देन ही टोल्ड मी दैट ही वाज डायरेक्टिंग वाज गोइंग टू डायरेक्ट अ म्यूजिक वीडियो ऑफ योर्स.
ही वाज गोना डायरेक्ट प्रोबब्ली दीवाना की. ही वाज गोना मेक दीवाना की बट दिस वाज ऑल प्री कोविड और हम लोग की लाइक हमने उस पे स्टोरी बोर्ड किया और सारा कुछ किया बट देन फिर कोविड आया और फिर लाइक उसके बाद सारा कुछ लॉकडाउन में चला गया. लॉकडाउन के बाद हुआ फिर काम शाम सारे बंद हो गए हैं.
या
अब वो जरा थोड़ी पोस्टपोन हो गई है. अब देखिए
आई वुड लव टू सी दैट कोलैबोरेशन क्योंकि वो लाइक मेरे उससे बात करने से व्हेन आई टॉक टू हिम ही वाज अ वेरी लाइक आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड ही न्यू के आर्ट्स को किस तरीके से मैनेज करना है. And like aapka music and his vision together would be such a good collab.
Aur dekho wo zara thodi comedy sketch zyada thi wo zara mera ek asal mein ek aur dost hai Hamza. Hum log main aur Hamza the na milke the most weirdest pop ideas soch ke jana unke boards banate hain baith ke. To wo Abdullah ke sath jo na hum wo kar rahe the लेकिन पता नहीं किस वजह से अच्छी बात है या बुरी बात है कि नहीं हो सका लेकिन होपफुली कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो होगा अब्दुल्ला के साथ.
आपकी इस एल्बम की थीम क्या थी? Because I saw you, I was going to ask you कि what's the theme for this album because I saw you going for a shoot at a river. Probably you were wearing certain traditional clothes. आप पगड़ी भी पहने हुए थे. And that's kind of been the whole thing of your album. जी sorry go ahead.
अब मैं आज वो पहन कर आने का बट फिर मैंने बस ऐसे ही थोड़ा लेजी हो गया फिर मैंने नहीं पहने. यार वो बेसिकली थीम ये है कि कुछ ऐसी सर्टेन बातें हैं जो मैं करना चाह रहा था लोगों से. वो उनमें से एक बात ये है कि म्यूजिक को एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर रखते हुए हमने इंडस्ट्री को जिस तरह इंडस्ट्री चल रही है उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो इतनी वियर्ड है कि वो एक्सप्रेशन भी वियर्ड हो गई है. मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी करंटली इंडस्ट्री में फहाशी बहुत ज्यादा है, हमारी करंटली इंडस्ट्री में अजीबोगरीब ड्रग कल्चर बहुत ज्यादा है और ये सारी चीजें इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि जो एक्चुअल खूबसूरत अपनी शायरी को खूबसूरत तो नहीं कहूंगा बट लेकिन जो एटलीस्ट बातें वर्थ नोटिसिंग है या वर्थ टॉकिंग है वो नहीं हो रही. और म्यूजिक एक ऐसा तरीका है, खास पे मेन स्ट्रीम म्यूजिक एक तरीका है. इवन दो आपने अभी बात की कि मैं अंडररेटेड हूँ बट लेकिन चलो अंडररेटेड होते हुए भी अगर मैं लोगों तक एक मैसेज पहुंचा सकता हूँ तो आई थिंक वो काम हो रहा है. जैसे तरम तरम में मैं ये बात कर रहा था कि किस तरह इंसान को जब खुदा से जब प्यार होता है और जब वो पहली मुलाकात वाला सीन होता है कि खुदा को आपको पहली दफा समझ आना शुरू होता है कि यार आपका खुदा है तो आपके लिए किस तरह वो रात का रंग बदलना शुरू हो जाता है. वो रात अगर रात भी है तो वो दिन लगना शुरू हो जाती है. वो अगर दिन है तो उसके अंदर रंग नजर आना शुरू हो जाता है. जो दूसरी बात मैं करना चाह रहा था जो दूसरा गाना था वो था फिको. फिको में मैं जो करंटली हम पाकिस्तान में खासतौर पर जो सिचुएशन से जिस सिचुएशन से गुजर रहे इवन दो वैसे मैं जब छोटा था मैं सोचता था उन दिनों में मुझे याद है शहजाद रॉय का आया था लगा रहे.
Yeah,
और इवन तो मुझे वो गाना बहुत पसंद था बट लेकिन मैं नहीं सोचा था कि यार मैं कभी जो ना ये पॉलिटिकल सॉन्ग्स नहीं करूंगा और मैं कभी इस तरह की गाने नहीं करूंगा क्योंकि उसके बाद जो ना स्टीरियोटाइप हो जाते हो उस तरह के गानों के लिए बिकॉज देन ही डिड लगा रहे एंड ही डिड सिमिलर सॉन्ग्स लाइक लगा रहे टॉकिंग ऑन सिमिलर टॉपिक्स बट आई गेस व्हेन यू ग्रो अप यू टेंड टू रियलाइज कि थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट यू एज एन आर्टिस्ट एंड फॉर मी एज एन आर्टिस्ट इट्स द सिचुएशन कि हम मुसलमान होते हुए एक मुसलमान खास तौर पे मैं एक मुसलमान होते हुए एक मुसलमान मुल्क में रहते हुए किस दौर से गुजर रहा हूँ और फिक्र उन्हीं बातों पे है कि ये हम किन हम सेक्ट्स में बांट के हम वो क्या कहते हैं किलिंग कर रहे हैं हम कोई किसी डिफरेंट सेक्ट को अगर बिलोंग करे तो हम उसको मार देते हैं क्योंकि हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो अब ये बातें जब मैं करने बैठा और जब मैं सोच रहा था कि मैं इस पर लिखूंगा तो मैंने कहा यार ये बैकलैश भी आ सकती है टू सम एक्सटेंट क्योंकि जो हमारे यहाँ हालात हैं वो कोई सुनने के किसी के अंदर पेशेंस ही नहीं है
इतना कल्चर हुआ है आजकल बैन होने का तो लाइक यू कुड हैव इजीली बीन बैंड लाइक दैट्स अ बोल्ड मूव
हाँ बट चलो ठीक है वो तो मैं भी लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट ही नहीं होगा मैं बैन हो जाऊँ अगर होता तो
बैनिंग इज आल्सो अ गुड वे टू प्रमोट योरसेल्फ लाइक जितने भी मुझे मैंने जिंदगी में लाइक मुझे सालों हो गए गाला बिस्किट खाए हुए ठीक है गाला का एड बैंड हुआ मैंने जहाँ जाके गाला का बिस्किट लेके आया हूँ मैं
ऐसे ये बैन ही कर देते यार बैन से ज़्यादा खास तौर पे बैन हो जाओ देयर इज नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी यार मैंने एक दफा सोचा पिछले दिनों हो रहा था ये स्टूडेंट रिफॉर्म्स हो रहे थे स्टूडेंट रिफॉर्म्स कह रहा हूँ स्टूडेंट मार्च हो रही थी पाकिस्तान में तो मैं जो ना उन दिनों गाना लिख रहा था खलबली तो मैं उसकी एक वर्ड से भी रहती थी तो मैं सोच रहा हूँ कि यार खलबली को जो अगर मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक को स्टडी करता हूँ और मैं इनके लिए लिख लेता हूँ और मैं और हमजा देंगे मैं और हमजा बैठे हुए थे और हम सोच रहे हैं हम कह रहे हैं कि यार क्या मजा ही आ जाए हम दोनों ने गाना लिखे क्योंकि उसमें वो भी गा रहा था हम इस पे वीडियो बनाते हैं और हमें जेल हो जाए जेल हो जाएगा कितना कमाल होगा यार हम एज आर्टिस्ट जेल हुई होगी और मशहूरी होगी
क्या पता कोई जेल में आलम निकल जाए वहां पे
पाक शाकू
वो एक्स्ट्रा मशहूरी है तो मशहूर होने के लिए तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मैंने कोई खतरनाक तरीका ही लिया है अगर तो ये बात किसी ऐसे बंदे तक पहुंचती जिसको नहीं पसंद होती तो वो आ सकता है आपके पास
That's so funny. तो, पाकिस्तान में हम लोग एक जमहूरियत है मगर जमहूरियत में हमें हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है कि हम किसी और की बात सुनने की जरूरत भी रखें Which is so sad.
कोई पेशेंस नहीं हमें हमें बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस नहीं खास तौर पे हम जैसे आर्टिस्ट लोगों की तो सुनने की बिल्कुल भी नहीं है कि ये तो वैसे ही हम मतलब म्यूजिशियंस वगैरह तो हम तो वैसे ही मिरासी हमें बुलाते हैं तो हमें तो क्यों वो सुनना चाहेंगे हमारी बातें क्यों सुनना चाहेंगे बट लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूथ है एटलीस्ट जो यूथ जो मुझे सुन रही है जो बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं क्योंकि मेरी जो फैन बेस है वो मोस्टली आजकल के टीनएजर्स हैं और अगर वो टीनएजर सुन रहे हैं और उन तक ये मेरा मैसेज पहुंच रहा है किसी भी तरीके से पहुंच रहा है तो मैं कामयाब हो रहा हूँ क्योंकि ये बात उनके दिमाग
में आपके पास है अगर ये फैन बेस यू हैव the audience that you have ke aapne ye message bhejana hai
bilkul yaar ye pata hai ye baat yahi baat thi ke main batata hu mujhe asal mein jo na main ek dekh raha tha video mufti mein ki on music because when I started studying the Quran one of the biggest topics in my head was ke what is the stance of music so I wouldn't get into the details but lekin one of the things that mufti mein ki jo mujhe baat jo ek bahut move ki and this was something which I saw common with a lot of other scholars but mufti mein ne bahut achi tarike se describe ki ki he was like ke aap current industry ko dekho aur aap musalmanon ko side pe chodo he was like ke main I met religious scholars of other religions like Christianity and Judaism and I talked to them about the music industry. I asked them a simple question, ke would you allow your children to listen to the music of Beyonce or Michael Jackson, the sexualized songs of these artists?
Yeah.
So their answer was no. And why would they let their children listen to any I'm sexy and I know it, yeah, my name is Sheila, and songs like that. And he was like, that's the problem. That's exactly the problem. It's not a religious thing. It's a thing that it's so, the industry has become so immoral that we have forgotten this thing. And here I have a responsibility that, I have realized that I realized that I have realized that to some extent this thing. That my
voice,
if God has given me, और मैं गा सकता हूँ, मैं अच्छे गाने लिख सकता हूँ, मेरी है, तो मैं क्यों मैं ये अजीबोगरीब गाने गा रहा हूँ, मैं क्यों, अगर मैंने इश्क के ऊपर गाना लिखना भी है, जैसे हीरी है एक लव सॉन्ग है, बेफिक्रे एल्बम का एक गाना है, वो भी एक लव सॉन्ग है, ये दोनों लव, मजनू लव सॉन्ग है, मैंने इन तीनों लव सॉन्ग्स को जब मैंने थैंक यू जब मैं सोच रहा था तो मैंने ये कहा कि यार लिरिक्स जो है वो वही आते हैं उन्हें वो प्यार को एक खूबसूरत तरीके से भी बयान हो सकता है प्यार की जो फीलिंग है अगर इट्स अ लॉन्गिंग फॉर अ लवर तो वो एक खूबसूरत अंदाज से बयान हो सकती है आपको बिल्कुल भी फहाश होने की जरूरत नहीं कि यार
जैसे तुम पहले होती थी
हमारे गाने मेकआउट मारो और हम किसी पार्क पहले होती थी जिस तरह इवन मेरे कुछ गानों में आपको मिल तो वो चीज वो रियलाइज रिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी और उस रियलाइजेशन ने मुझे ये सोचा कि यार मुझसे ये सोचवाया कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ मैं क्या एग्जैक्टली मैं क्या अपनी आवाज से यूज करके लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ तो वो फिर ये एल्बम बनी वो
आई वाज नोटिसिंग के 90s में एटलीस्ट पाकिस्तानी कल्चर में जब जुनून आया था दे स्टार्टेड द रेवोल्यूशन ऑफ सूफी रॉक And now I feel like with this album and a few of your other songs, Urta Tara being one of them, Sufi pop is coming back. It's what I'm thinking. Like, mujhe yaad hai Ali Zafar started to do this jab unhone Jhoom release ki thi. That was a great album as well. Aur wo bhi bahut Sufism aur Khuda Bandi pe thi. And this album as well, mujhe feel ho raha hai ke usi type ke elements hai. And now that you're saying ke like, ab thode se political side pe bhi dip kar rahe ho, jaise Junoon ne kiya tha with their songs. Inqilab ho gaya ya all those other songs
bilkul
do you feel like that's a fair assessment
I think that is a fair assessment aur baat ye hai ki at least main ye realize karta hu ki ab aajkal ke culture mein main isme ek cheez add karna chahunga ki baat bilkul aisi hai jis tarah aap kar rahe ho nazar but lekin isme ek aur cheez hai ki log jo hai na aajkal ke aap se expect karte hain ki aap har topic pe baat karo आप दुनिया जान के जो जो ट्रेंडिंग टॉपिक है आप उसमें बात करो आपको जरूरत नहीं है आपको ये दुनिया जान के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करने की आपको वो जरूरत है कि एटलीस्ट जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है सबसे पहले आप उस पर तो बात करो ना आप अपनी आवाज को यूज तो करो किसी अच्छे काम के लिए तो यूज करो देन अगेन एक और बड़ी चीज है जो आजकल के माशरे में मैं फील एक बड़ा मसला है जो मैंने अपने गाने एल संभलजा में मेंशन किया है I don't know if you've heard it. I released it on Insta like during the COVID days, and now it's a part of the album. So you get to hear it very soon, probably next week. So
great.
Sorry. I'll be sending you the link. Yeah.
Yes, please. Yes.
So, acha so, Edil Sambhalja for me was ke I recently joined Twitter, and when I joined Twitter. So I thought I'll be very active, you know, I'll tweet and, you know, have to make a following on Twitter. It's very important for an artist to have at least some following on Twitter. So I said, you know, like, okay, it's fit. I use it, I see it, I tweet it, I do something. But even though I didn't come, but lekin what I realized was that, yaar, what happened to people? Every person got a voice, so they just started taking it.
That's the problem as well.
Koi achi... आप क्यों लोगों की ले रहे हो यार आप किसी की अच्छा ठीक है पहले मैं समझता था पता है क्या कुछ एक साल पहले तक मेरा व्यू था कि यार पाकिस्तानी एज अवाम जो है ना हम बहुत शुगली अवाम है हम हर चीज का शुगल मना लेते हैं
ये बात भी सही
है हमें जो ना हद नहीं वो नजर आती हाँ कि वो हमें लाइन नहीं नजर आती कि वो कब लाइन ज्यादा बढ़ जाते हैं हम अपने औकातों बाहर हो जाते हैं बट अब मैंने ये रियलाइज किया है कि यार वो विद टाइम जो है ना हमें तमीज ही नहीं रही है हमें बिल्कुल तमीज नहीं रही हम हर किसी की दाएं बाएं लेफ्ट राइट बस आगे पीछे ले रहे हैं और उनकी बेइज्जती कर रहे हैं कि ने इसी ने अच्छी बात की हमने उसकी भी बुराई कर दी। और ये वो बात थी कि जिस चीज की वजह से फिर मैंने लिखा कि ऐ दिल समझा क्यों है तू रोता जब ये सफर एक आरजी रहना।
सही बात।
वो ये बहुत ये ऐसी फीलिंग्स हैं जो मैं कहता हूँ कि यार हम कुछ कर नहीं सकते। और ये तो भी पहली एल्बम है जिसपे मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। देखें अगली एल्बम पे आजकल काम हो रहा है, उसके गाने ऑलमोस्ट लाइक थोड़े बहुत फाइनलाइज हो रहे हैं कि अच्छा कौन कौन से हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं।
अरे दैट्स गुड राइट, लाइक यू कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली वर्किंग एंड कंसिस्टेंटली रेडी टू लाइक रिलीज स्टफ, दैट्स वेरी गुड।
और मेरे ख्याल से आपके जो एल्बम्स में और गाने में यू कैन डेफिनेटली सी अ ग्रोथ, दिस सेंस ऑफ लाइक यू बीइंग मैच्योर, लाइक आपके लिरिक्स से, आपके म्यूजिक से। और आई थिंक दैट दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी टू से, लाइक जब भी मैं आपके डिस्कोग्राफी सुनता हूं यू कैन सी अ क्लियर ट्रांजिशन।
ये मैं भी फील करता हूँ यार। मैं और मेरे दोस्त अभी पिछले दिनों बैठ के यही बात कर रहे थे। मैं अपने एक दोस्त के घर गया, आई मेट हिम, ही वाज इन अमेरिका सो ही कुडंट बी हियर फॉर द एल्बम लॉन्च एंड ऑल। तो आई वेंट ओवर टू हिज प्लेस एंड मैं उसको जो ना एल्बम सुना रहा था पूरी, और मैं उसे कह रहा था कि ये तुम सोच सकते हो ये वही लड़का है जो एक टाइम पे स्कूबी डू भी गा रहा होता था। और
नहीं दैट्स दैट्स
आई हैव अ सॉन्ग कॉल्ड
नहीं यार रियली वो कब आ रही है और ये दैट सॉन्ग
बोनस ट्रैक
यार नहीं नहीं इट्स आउट देयर इट वाज 2015 रिलीज।
अच्छा मुझे आई हैव टू गो लुक फॉर इट देन।
आई थिंक मैं आई वांट टू मेंशन समथिंग द लास्ट टाइम दैट वी टॉक्ड मैंने आपका गाना सुना मैं कभी, एंड ऑनेस्टली आई थिंक दैट हैड सच एन इफेक्ट ऑन मी, लाइक आई वाज लाइक यार ये गाना बाकी बहुत अच्छा है, लाइक आई थिंक यू आर टॉकिंग टू गॉड, आई हैव सम सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी टू दैट, इट मूव्ड मी टू इन अ वेरी सर्टेन वे।
थैंक यू दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड कि लोगों को एटलीस्ट, क्योंकि यार म्यूजिक पता है क्या, आपको म्यूजिक आपको इमोशनली मूव कर सकता है, म्यूजिक आपको हर लिहाज से आप को एक मेंटल स्टेट में डाल सकते हैं जिससे आप चीजें सोच सकते हो। यार आप अरिजीत सिंह के गाने सुनो ना तो आपको ब्रेकअप वाली फील आ जाती है।
हाँ भले हुआ ना हो, ये काफी टाइम हो गया हो, तब भी आ जाती है।
हाँ, बेशक जितनी देर हो जाए आप जब वो चन्ना मेरे यहाँ सुनते हो ना तो आपको वो दिल में दर्द होता है। तो वो एक बात है कि म्यूजिक में वो ताकत है और आपके लिरिक्स में वो ताकत है कि आप लोगों तक इस तरीके से मूव कर सकते हो, तो क्यों ना हम अपने म्यूजिक को एक अच्छे तरीके में यूज करें, क्यों ना हम अपने म्यूजिक को एक ऐसे तरीके में यूज करें जिस तरीके से शायद खुदा भी हमसे खुश होगा और शायद हम भी अपने आप से एज ह्यूमन बीइंग्स खुश होंगे कि यार हमने भले एक मुश्किल तरीका चूज कर लिया है लेकिन ठीक है। मतलब मैं भी अभी कोई हीरिया टाइप गाने लिख सकता हूँ और सिर्फ हीरिया टाइप गाने करता रहा हूँ,
आपको एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन होगी कि जो आपने बनाया है वो यू 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 टेक फुल ओनरशिप ऑफ इट, और आपको खुशी होगी कि यार हाँ मैंने ये बनाया है, लाइक इंस्टेड ऑफ मेकिंग थिंग्स ऑन ट्रेंडी टॉपिक्स जो ट्रेंड आज है कल नहीं है, लेकिन जो बातें आप ख्याल से आज कर रहे हैं दे आर स्टिल गोइंग टू बी रेलेवेंट इन द फ्यूचर।
बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात पता है क्या, जो मैं फील करके जिस चीज की वजह से मैं ये ज्यादा एडमिट था कि यार हमने मेरी, क्योंकि असल में रिसेंटली ना अभी आई थिंक आई टोल्ड इसके मेरी मंगनी हो गई हुई थी
जी जी,
और मेरी अभी शादी होने वाली है। अजीब बस गालियां दे रहा होगा गानों में और अजीबो गरीब बातें कर रहा होगा, शायद फहाश गाने लिख रहा होगा, तो एक वो भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर कि यार उनके लिए भी, क्योंकि आपकी फ्यूचर जनरेशन आपको बहुत देखती है। मैं अपने बाप को बहुत देखा, मेरे बाप ने मेरे बाप को बहुत देखा है, और انشاءاللہ آگے ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے, جب وہ ہمیں دیکھیں گے تو ہم کس طرح کے انسان ہوں گے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے.
اور یہ چیز لائک سیکورنگ یور وائس فار دی فیوچر جنریشنز کہ تاکہ دے کین لک بیک اینڈ ناٹ فیل اشیمڈ, بی لائک یار یہ ہمارے انسیسٹرز تھے اینڈ دس از دی میسج دیٹ دے گیو اس.
بالکل بالکل, یہ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے یار. ہم نے تو چلے جانا ہے, میں نے کیا ایک چھوٹی سی زندگی گزار کے چلے جانا ہے, آگے کی جو میری نسل نہیں تو آگے کسی اور کی نسل, اس کے لیے تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ پیغام ہونا چاہیے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے.
یہ آپ نے تو میرا تو ڈیپ تھنگ ہے. یا اور آرٹسٹ کے لیے آئی تھنک آئی ایم سو جیلس اف آرٹسٹ بیکاز واٹ یو گائز ڈو از لائک یو گائز بائی ریلیزنگ پوئٹری بکس اور میوزک یو گائز بیکم امورٹل ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. کہ یو نو اگر عمر بھائی آپ کے کوئی پوتے ہوتے ہوں گے, پر پوتے دے کین آلویز گو بیک اینڈ بی لائک یو نو واٹ عمر مختار ایک تھا اینڈ ہی ہیڈ میوزک, ہی ٹاکڈ اباؤٹ گاڈ and love and finding himself somewhere along that line. So I think it's great.
Yeah, like you're, it's very cool ke aap abhi tak abhi se apni legacy ke bare mein soch rahe
hain. Theek hai, pehle Scooby-Doo likhta tha.
Nahi, no, transition dekhenge na Scooby-Doo se leke Jia se leke Utta Tara se leke ab Heerie pe.
Aap to wo usi tarah theek hai, wo as long as transition dekhe aur یہی بات ہے یار, یہ بہت ضروری ہے, ہم لوگ بھول جاتے ہیں. یہ ایک سفر, ایک عارضی ہے, اور اس عارضی سفر میں جو نا ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, وہ رسپانسبلٹیز ایز سٹیزنز ہیں, ایز ہیومن بینگز ہیں, ایز اگر کوئی کیا کہتے ہیں آرٹسٹ ہے تو اس کی ایز این آرٹسٹ ایک رسپانسبلٹی ہے. اور شاید یہ البم میرے لیے ایک ایسا ہی پارٹ ہے کہ میں اپنی رسپانسبلٹی کی طرف ایک پہلا اسٹیپ لیا ہے. پرابلی میں ابھی رسپانسبلٹی کو پوری طریقے سے پڑھا نہیں ہے, بٹ لیکن یہ شاید ایک پہلا اسٹیپ ضرور ہے.
آپ خود ریئلائز کرو گے کہ آپ کی ریسپانسبلٹی ایز این آرٹسٹ ٹرانسینڈز جسٹ دی میوزک, جسٹ دی ورڈز, اینڈ اٹ ٹرانسینڈز جنریشنز ایز ویل.
بالکل.
عمر بھائی ابھی ریسنٹلی آپ نے آئی تھنک تین چار دن پہلے لائیو پرفارمنس کی تھی, ہاؤ واز دیٹ لائک after so long you yeah, went out had you had you know a gig, aapne proper concert kiya tha, because having that mindset of your legacy and your songs and your message, sabse behtareen tarika jo matlab as a writer I feel very jealous of like musicians jo and stand up comedians and all these people jo jaake apna fun logon ke samne barah-e-raast pesh karte hain, that's something that writers can't do, kyunki agar maine kitab likhi hai to I have to give you the book, you have to take a week to finish it and then we can have a discourse, we can have a conversation. Like agar main musician hu to main aapke samne jaise aapne abhi guitar utha ke mujhe 2 minute mein gana suna diya, now we can have a conversation about that. How does that feel being in a setting, in a live setting, logon ke samne, sekdo logon ke samne singing, them singing your songs back to you, some songs you played jo unhone sune bhi nahi the, how does that sensation feel?
Yeah, so basically jo abhi wala show tha na, ye to ek kya kehte hain, it was a charity event that I did, and usually for charity event, because we don't take the whole team, I just go there myself for a small while, like if the crowd's good to I'll stay for a little bit longer, but yeah. Lekin agar if like matha se crowd hai, kyunki phir then again hamari lahori mom kisi bhi tarike se shift ho sakti, ya to wo zameen pe baith ke bas ye kar rahi hogi, ya to کر رہی ہوگی تو پاکستانی مام کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہو, تو وہ ڈیپینڈ, اگر تو وہ شو اچھا ہو جاتا تو میں لمبا کر لیتا ہوں, اگر نہیں ہوتا تو پھر میں پھر تین چار گانے کے, بٹ سرپرائزنگلی اچھا شو تھا. اور ایک چیز بالکل, ہاں وہ کافی مزے کا تھا یار, اور مزے کی بات یہ تھی یار اس دفعہ آفٹر ویری لانگ ٹائم, بیکاز گانے اتنے آ چکے ہیں کہ آئی ڈنٹ دی اپرچونٹی ٹو ڈو اے کور, اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ یار میں کور نہیں کرنا چاہتا اور میں اپنے گانے گانا چاہتا ہوں whenever I get on stage, اور اس دفعہ exactly وہی تھا کہ مجھے, میں ایک گانا اپنا ختم کرتا تھا تو مجھے نیکسٹ میرے ہی گانے کی فرمائش آ جاتی کہ آپ یہ والا گانا گاؤ, وہ ختم کرتا تھا اگلے میرے گانے کی, تو اس لحاظ سے کافی وہ ٹرانزیشن ہے اور وہ اچھی چیز ہے. دوسری چیز جو کووڈ کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ میں جب اسٹیج پہ چڑھا اور میں جب مائک کو اپنے منہ سے لگایا تو میں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ مجھے پورا کانسرٹ مائک کو اپنے منہ سے لگا کے گانا ہوگا, اور یہ مائک پتہ نہیں کس کس نے پہلے اس کو منہ لگایا ہوگا اور کون کون پہلے گا کے گئے ہیں, اور میں اب لگا رہا ہوں, اور میں اس تھاٹ لوپ میں کہہ लेकिन बट व्हेन यू आर ऑन स्टेज यू हैव टू क्विकली रिएक्ट टू इट और यू कांट डू एनीथिंग आई कुडंट हैव बीन के यार नहीं नहीं पहले लाओ जरा वो क्या कहते हैं
सैनिटाइजर लाओ
डिटॉल स्प्रे लगाओ सैनिटाइजर लगाओ क्योंकि वो सेटिंग ऐसी नहीं थी उस टाइम पे द ऑडियंस वांट्स यू टू परफॉर्म और मुझे याद है जो लास्ट शो मैंने किया था बिफोर लाइक दिस होल थिंग इट वाज इन मार्च एंड इट वाज इन फैसलाबाद और दैट शो मैन वाज लाइक अ जंग क्योंकि वी वेंट देयर और उस दिन बिल्कुल उससे अगले दिन लॉकडाउन हो रहा था और इन्होंने शो कैंसिल नहीं किया एंड सिंस दे हैड गिवन अस द मनी सो वी हैड नो चॉइस बट टू परफॉर्म तो आई वेंट देयर विद माय टीम और हम सब ने ग्लव्स पहने हुए इवन मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं और लाइक मास्क पहना हुआ है और लाइक वो माइक को हम देख रहे हैं कि माइक को हाथ नहीं लगना चाहिए उन दिनों तो बहुत ज्यादा पैरानोया था कि पता नहीं किस तरह फैल जाएगा क्या फैल जाएगा मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ कि यार आपने मेरे से तस्वीर लेनी है तो अभी ले लो दूर होके ले लो कोई पास होके नहीं तस्वीर लेगा स्टेज पे कोई नहीं आ सकता और वो एक बिल्कुल एक अजीब सीन था एनी टाइम मैंने अपना गिटार रखना होता था गिटार बजाना होता था तो आई हैड टू टेक माय ग्लव्स ऑफ जैसे ग्लव्स उतारता था और गिटार पकड़ता था अगले सॉन्ग के लिए अगर रखना है तो वापस मेरा एक बंदा तैयार होता था मुझे ग्लव्स देने के लिए तो दैट वाज लाइक अ वियर्ड सेटिंग और अब वो मैं स्टेज पे चढ़ के मैं वो माइक के सामने लगा हूँ मैं याद कर रहा था कि यार मैं लास्ट टाइम जब चढ़ा था तो ये हो रहा था आज मैं माइक के सामने मुंह लगा के खड़ा हूँ लाइव बताए तो बट लेकिन अब क्या हो सकता है इट वॉज फन बट इट वॉज फन टू गेट बैक ऑन स्टेज और लाइक लोगों के साथ लोगों को अपने गाने वही बात लाइव सुना के उसमें मजा आता है और लेकिन एक चीज है कि जो आपका नया गाना होता है ना हमेशा ऑडियंस उस पे होती है अगर वो पहले यू हो रही होती तो एटलीस्ट अब ये हो जाती है
तो उन्होंने वो पहले कभी उससे रिलेट नहीं किया उसको सुना नहीं है उसको समझा नहीं है So it's very interesting to play a brand new song jo kisi ne nahi suna hai in front of a new brand new audience it's interesting
bilkul aur aapko idea ho jata hai as an artist aapko idea ho jata hai ki acha yaar ye audience connect kar rahi hai ya nahi kar rahi hai acha theek hai sahi hai next time main perform karunga ya nahi karunga ye gana kitna chalega nahi chalega aapko sara kuch thoda thoda aapke dimag mein calculation ho rahi hoti hai sath sath
वैसे मुझे लगता है कि तरम तरम could be a really good sing along song
yeah especially with it's a very good crowd singing song
hopefully let's see
आप अपने म्यूजिक स्पॉटिफाई पे कब डाल रहे हो उमर भाई cuz this new album is not on it yet
यार सो बेसिकली एल्बम के जो ना दो गाने रहते हैं
अच्छा
जो अभी तक कंप्लीट नहीं है
तो व्हेन इज द टेंटेटिव डेट व्हेन द एल्बम इज कमिंग आउट
यस सो YouTube और SoundCloud पे जो ना इट कम इसी तरह हफ्ते में दो दफा और क्या कहते हैं अब मेरी कोशिश है कि विद इन द नेक्स्ट 2-3 डेज क्योंकि एक गाना रहता है जाने दो और इट वाज पार्ट ऑफ द लास्ट इयर्स की जो सिंगल्स थी उनका एक गाना था एंड आई मेड द म्यूजिक अगेन तो बिकॉज़ आई रियली लाइक द सॉन्ग एंड आई फेल्ट लाइक आई डिडंट डू जस्टिस टू द प्रीवियस वर्जन सो आई मेड इट अगेन तो आई एम कंप्लीटिंग दैट और दूसरा इट्स विद सलार शम्स आई डिड एथ
विद हिम
हां हां वो मेरे दोस्त हैं तो वो उसके साथ मैंने वो गाना किया था तो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड एलएसडी विद सलार तो
सही है
तो
वैसे अब मैंने आपके इंस्टाग्राम पे नोटिस किया कि यू आल्सो आपकी बातचीत उमर फारूक से भी है द गाय हु सांग पतंग तो आई थिंक इफ यू गाइस गेट अ चांस आप उनके साथ जरूर कोलैब करें आई थिंक बोथ उमर्स वुड आई वुड पे मनी टू वॉच दैट
या वी आर ट्राइंग टू गेट हिम ऑन द पॉडकास्ट एज़ वेल लेकिन वो हमारे
yeah. basically मैं जो ना उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और लाइक दिस इज बिफोर हिम नोइंग मी अबाउट मी सो व्हेन मी एंड माय फियांसे मिर्हा व्हेन वी मेट तो आवर सॉन्ग वाज जो पतंग नहीं उनका
पतंग
दैट्स द सॉन्ग वी यूज्ड टू कॉल दैट आई मीन वी यूज्ड टू कॉल दैट आवर सॉन्ग वी यूज्ड टू बी लाइक यू नो दिस इज आवर सॉन्ग वी विल जैम दिस इज आवर जैम एंड I even mentioned that song in one of my songs called kya naam tha dil ke taar ke yahan udti patang mile dance floor pe hum yahan ghude saare to waha I put that song in the lyrics because it was our song man yeah, we felt yeah. very it felt it, yeah. like as an artist matlab jo log mere gaane ke bare mein kehte hain main pehli dafa kisi aur ke gaane mein aur main keh
raha hoon that song is wonderful that song is like It's so good.
تو میں نے جو ہے نا جب یہ دل کے تار ریلیز کیا تو آئی ٹیگڈ ہم آن انسٹاگرام and he liked it and then he didn't message me again and obviously him being a bigger star and me being a fan I would be like yeah half fit hai theek hai easy hai koi
masla acknowledgement mil gaya you noticed
ha like ho gaya pata nahi dekha bhi khola bhi hai koi farak nahi padta aur mere liye wo fan moment tha and then after a few months like 6-7 months baad I was like this is during the lockdown period I was doing I was writing a new song almost every day. ये वो कुछ 4-5 दिन मैंने ये हरकत की थी कि मैंने सोचा कि मैं हर रोज एक नया गाना लिखूंगा और लगाऊंगा. So I wrote Parchhai, I remember, and I put it online. रात को I was नहीं रात में सुबह I woke up and I remember मुझे आई हुई है follow back आया हुआ है by Umar Farooq and I was like what just happened main subah subah utha main keh raha is this really happening is Umar Farooq really following me kya scene hai aur and by night he had messaged me ke how he enjoyed the music and all or he didn't know ke I also existed and all but and then we talked about music and all we were like ha yaar sometime soon kisi time karte hain koi collab shrap so
no that will be a great collaboration I think we'd love to see that
I think that's two worlds of Pakistani indie artists that are going to colliding and then I would definitely love to watch that
Umar bhai aapko aapko jaane se pehle mujhe ek sawal tha aapka about your jaise aapne abhi do teen dafa mention kiya about your fiance how does falling in love change your writing process as an artist Because I know for a fact that before falling in love, I used to write like those depressing, single, like koi mujhe chahle wale poems and those type of stories. And then after you fall in love, aapka perspective hi dunya par change ho jata hai. Just jo aap baat kar rahe the na ke din mein rang aur raat mein roshni dikhti hai. That's what starts happening when you're in love. So how did that change your perspective as a writer of music? And how does that come back to Taram Taram?
Yaar, acha, very interesting question. Yaar. Basically, for me, मैंने अपने जितने भी गाने लिखे ना मैं उनको उसमें कम्प्लीटली अपनी जो करंट लाइफ की सिचुएशन होती है ना वो बयान कर रहा होता हूँ तो हैंस एक ऐसी एल्बम है जो आप लोगों ने नहीं सुनी और इसमें आप लोगों को कुछ नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था और वो मैंने उस चीज को एक छुपाने का ही फैसला कर लिया तो हुआ क्या कि जब मेरी ये मिर्हा से मुलाकात हुई तो میرے سب سے پہلی جو چیز ہوئی کہ میرے میوزک میں چینج آیا اور وہ میرے میوزک میں چینج ایسا آیا میں آپ کو بتاتا ہوں بلکہ میں نے کیا لکھا
اگین Spotify یوزرز عمر بھائی گٹار پکڑنے گئے ہوئے
تو وہ گانا تھا وقت ارادوں میں چھوڑنے کیا تھا یہ بیچ والا کاٹ دینا مجھے فگر آؤٹ کرنا پڑے گا ہاں ٹھیک ہے وقت ارادے میں چھوٹی سازشوں میں ڈھونڈے یہ تیرا چہرہ بھیڑ میں انجانوں میں لفظوں کے دھاگوں میں لکھے جو کاغذوں پہ من میرا دے جو تجھ کو ہے بتانے دیکھوں جو تجھ کو میں من میں کر کے میری ہر سانس پہ تیرا ہی نام جلے کب سے یہ کیا ہوا میرا یہ حال نہ پوچھو تم نہ میں جاؤں مجھ کو یہ کیا ہوا آ آ آ آ آ آ کیسے یہ ہو گیا آ آ Yeah. और ये वो पहली फीलिंग थी जब प्यार की, वो पहली किरण जब आप पे गिरती थी, एंड यू लाइक ए
दैट सॉन्ग. इज दैट सॉन्ग आउट?
या दैट सॉन्ग्स आउट इन एक्यूस्टिक वर्जन.
भाई वी हैव, आई हैवंट हर्ड दैट सॉन्ग. दैट वाज सो ब्यूटीफुल, जस्ट व्हाट यू डिड देयर.
इसी तरह वो एक्यूस्टिक वर्जन ही है.
क्या नाम है, मैं अभी इसको डाउनलोड करता. I love that version.
मुझको ये क्या
हुआ? I'll check it out. I'll check it out after this interview.
By the way, निशान का जो acoustic version is my favorite love song of yours. Like it's.
यार पता है, that for a very long time वो मेरा भी बहुत favorite था. उसकी खास तौर पे I'll play it for you. वो जो एक ये part है ना. ये मुझे गिटारिंग इतनी खूबसूरत लगती थी, और जब मैंने लिखा था तो मैं बस तेरी बाहों में जो खो गया, तेरी सांसों में गुम हो गया, तेरे मुंह में जो छुआ तो दिल पे के निशान रह गया, तेरे मुंह का निशान निकलेगा. ये
बेहतरीन.
और इसमें जो आपने आई थिंक वायलिन लगाया था पीछे, दैट जस्ट एलिवेटेड द सॉन्ग टू a different level altogether.
Yeah, that's what we did as well. Jab hum log apne gana bana rahe the na, we were like, yaar isme agar piche cello ya violin ya string dal doge na, khud hi feel aa jayegi.
Ha, wo feel khud hi aa jati hai. Wo bilkul aise hi hai. To thank you yaar. Ye gana mera bhi kafi arse tak favorite gana raha tha, aur aaj maine bade arse baad lekin bajaya.
Nahi Umar bhai, I feel the struggle that you have right now of not performing live. आपके भी इसी इंटरव्यू में, इसी टॉक में, आई कैन फील इट, लाइक यू रियली रियली वांट टू गो बैक टू परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड परफॉर्मिंग फॉर पीपल. एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू एल्बम इंसाल तराज. व्हेनेवर इट रिलीजेस फुली आई विल लिसन टू इट. हम लोग थोड़े से भर गए यार, हम लोग स्पॉटिफाई पे सुनते हैं, तो जल्दी से स्पॉटिफाई पर डाल दो ताकि मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल लूं.
एंड स्पॉटिफाई बाय नेक्स्ट मंथ.
या दैट्स फाइन, आई कैन वेट दैट मच. अभी YouTube पर सुन लेंगे, कोई मसला नहीं है मुझे.
So yeah, definitely it was great to have you on. Aur aapke thoughts on the album ke bare mein and catching up with you since the last time we spoke. Lots has happened in terms of your musical journey. Aur aap se baat karke, I am looking forward to what you have in store for us.
Yes.
In the next few years. So aap aise music banate rahe, okay, aapke aise fans maujood hai duniya mein who are dedicated to your music, who will listen to whatever you will release, and we support you.
And Umar bhai, you have to promise me one thing. Theek hai, hum dono ne abhi tak, like we've lived in Karachi for 8 years, we never have been to Lahore. Hum next time Lahore aayenge, you're gonna take us on a tour.
Done.
Chale sahi. Yeah. I have you on record on for this. Phir toki nahi karani hai.
For sure, done.
Inshallah, yeah. Whenever we come to Pakistan, to Lahore, we're gonna meet up.
Done.
ठीक है. And no problem, man. Thanks for your time. Thodi si technical difficulties ke alawa, this was again a wonderful conversation. Yeah. It's always lovely talking to you. And inshallah, we'll do this again soon.
Inshallah, hopefully. Right. Next album.
Yes, inshallah. I'm inshallah. Down. Make this a album launch thing.
This is a new segment of the broadcast.
Yeah. Umar Bhai's corner.
For sure, man. Like, next album will be, I think, in February something.
Yeah.
So we can do this like 2-3 times a year. Every time.
I love it. Aapse baat karke bahut refreshing lagta hai, because sometimes when I look into Pakistani music and I see that the top of the charts and the most popular songs are like Tum 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 and that kind of stuff. And then I listen to your stuff, Taram Taram Ho Gaya, Heeri Ho Gaya, Majnu Ho Gaya. I feel that sense of gravity, like chahiye bhi hain log, artists hain Pakistan mein.
Aur mere liye ye factor bhi hai ke to see someone like him jo itne junoon se apne passion ko pursue kar raha hai.
That's inspiring.
That's very heartening as someone who's watching it.
Thank you. It means a lot. Genuinely, it means a lot. It's always a pleasure to talk to you guys too, man. Yeah, like,
for sure.
It was fun to have a conversation with like you guys. It's so tabhi hence I was like, yeah, jab ye release plan kar raha tha, I was like, there, I know these people who to do this podcast, and it's always fun to talk to them. I should definitely talk about the album with them.
Good. We were gonna reach out to you before you reached out to us, so it's just that chemistry that we already have.
yeah, for sure.
Take care of yourself, inshallah, and lots of love to you. Lots of prayers. Good luck for the future ventures, and we'll speak soon. Okay.